मेरे पास भेज दे, जो माइक को सीधे करने खड़ा हुआ है ना उसको मेरे पास भेज दो। ये माइक वाले का हाथ सीधा रहता नहीं, कोई जबल करना पड़ता उसको।
आपको कहता मैं भैंस का काजिर हूं, वो अपनी जिम्मेदारी समझता है।
अपने को भैंस का ताजे कहता हूँ तो भैंसों को लाकर बांधूंगा काम, और भैंसों को लाकर कहां से लाऊंगा और भैंसों को कहां जाकर बेचूंगा, ये पूरी एक जिम्मेदारी अपनी समझकर कर उस जिम्मेदारी को पूरी करता है वो। और कमा एक कारोबारी आदमी ताजिर है, तो अपनी ताजिर होने के बाद अपनी तिजारत की जिम्मेदारी समझता है। ऐसे आज हम और आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो वो तो मुसलमान जो इंसान तो सब है, जो मुसलमान वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। तो इंसान होने के बाद खाना पीना सोना कपड़े पहनना घर 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 बनाना सब आ गया, तो हमारी जरूरत है, सबकी जरूरत है इंसानों की। तो सलमान ने उनकी भी जरूरत है, वो भी उनके पास भी सवाल यहाँ है, घर है, सब है। लेकिन हमने दुनिया में 750 करोड़ इंसान के दरमियान में हम ये कहते हैं हम मुसलमान है, तो हम मुसलमान है के माने क्या, हमारी क्या जिम्मेदारी है? मुसलमान दो हाथ दो कान दो हाथ दो पैर वाले को नहीं कहते क्या? इस मुसलमान का नाम रखने से मुसलमान हो जाता है? मुसलमान के माने, मुसलमान के माने ताबेदार के हैं, और मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो ताबेदारी के साथ जिंदगी गुजारे। किसी ताबेदारी अल्लाह की, इस तरह अल्लाह ने पैदा किया है हमको, पैदा किसने किया है? अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने पैदा किया, और इस पूरी कायनात को अल्लाह ने हमारे लिए पैदा किया है। जमीन आसमान चांद सूरज सितारे ये बादलों का निजाम, चरिंदे परिंदे हवाएं सब अल्लाह ने सब पैदा किया है। लेकिन इंसान के पैदा करने का मकसद क्या है? इंसान को समझना चाहिए, और खास करके मुसलमान को, मुसलमान अल्लाह ने मुझे पैदा किया है, और लाखों करोड़ इंसानों के बीच में मुझे अल्लाह ने इस्लाम की दौलत दी है, तो मेरी क्या जिम्मेदारी है? इसको समझने की जरूरत है मुझे भी और आपको भी, और इस जिम्मेदारी को पूरा करने की फिक्र करने की जरूरत है। ये नहीं है कि जमा हो गए बात सुन ली बहुत सारों बैन क्यों चलो, इसके लिए मान लो आज पूरी दुनिया में मुसलमान अपनी जिम्मेदारी को छोड़े हुए हैं, अपनी जिम्मेदारी को भूले हुए हैं, और जिम्मेदारी के पूरा न करने की बुनियाद पर पूरी दुनिया में ये मुसीबतों का शिकार है। और ये बात साफ है, जब आदमी जो आके अपनी जिम्मेदारी को पूरी नहीं करता वो परेशानी का शिकार होता है। हुकूमत अपने कुछ लोगों को मुलाजिम बनाती है, उनको कुछ जिम्मेदारी देती है, कलेक्टर DSP पुलिस मामलतदार ठेकेदार पता नहीं क्या क्या होते हैं, इन तमाम को हुकूमत ने जिम्मेदार बनाया है और जिम्मेदारियां दी हैं। जब तक ये जिम्मेदारियां फ्री करते हैं तो हुकूमत उन्हें मोहब्बत की निगाह से देखती है, अदर की निगाह से देखती है, और उनकी जरूरत का इंतजाम करती है, और अच्छी जिम्मेदारी पूरे करने पर अवार्ड देती है खुश होकर। लेकिन जो जिम्मेदारी देने के बाद वो जिम्मेदारी को पूरी न करे तो हुकूमत क्या करेगी? जेल में भरेगी उसे, उसकी सजा सजा देगी, उसकी तनख्वाह बंद होगी, इसकी फैसिलिटी जो हुकूमत ने दी सब छीन ली जाएगी, जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे हैं। हर दिन आपको दी है, हालांकि हुकूमत ने इसको बनाया नहीं है, पैदा नहीं किया है। अल्लाह ने तुमको बनाया और पैदा किया है, और अल्लाह तुम्हारा मालिक है, और अल्लाह ने हमें जिम्मेदारी दी है, और कुरान बयान किया है कि हमने इंसानों और किताबों को दुनिया में पैदा किया है अपनी इताअत के लिए, अपनी ताबेदारी के लिए, कि ये हमारी ताबेदारी और जिंदगी गुजार है, इसे हमने पैदा किया है। इसे अल्लाह ताला शान होने हमें पैदा करके छोड़ नहीं दिया, बल्कि हमें अपनी ताबेदारी की जिंदगी गुजारने के लिए, समझाने के लिए हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह दादों को भेजा कि जाओ मेरे बंदों को समझाओ मेरी ताबेदारी की जिंदगी कौन सी है, क्या है, ताकि मेरे बंदे मेरी ताबेदारी वाली जिंदगी गुजार कर दुनिया में भी कामयाब हो, सुकून चैन की जिंदगी हासिल कर लें, और आखिरत असल तो मौत के बाद जिंदगी है, आखिरत दुनिया में कोई हमेशा रहा नहीं रहेगा, रोजाना हमारी मौत करीब आ रही है, और रोजाना हमारे हमारी बच्चियों में लोग मर मर कर कब्रिस्तान जा रहे हैं, हमें भी जाना है। मौत के बाद की असल हकीकी जिंदगी मौत के बाद की है, जो अबदी जिंदगी है, जहां अल्लाह ताला शान हो जिन लोगों ने दुनिया की जिंदगी में अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया होगा कि अल्लाह की इताअत पर जिम्मेदारी होगी, अल्लाह पर ईमान, अल्लाह का डर दिल में पैदा किया होगा, आगे अल्लाह से डरे, अल्लाह से डरे क्यों, कि अल्लाह उसका खालिक और मालिक है, और अल्लाह ताला का ये हर वक्त मोहताज है, इंसान हर वक्त अल्लाह का मोहताज है, सांस लेने में अल्लाह का मोहताज है, अगर अल्लाह हवा रोक ले तो इसका क्या होगा, पानी का मोहताज है, बारिश का मोहताज है, बारिश रुकते क्या कहे, क्या करोगे, बारिश हवा खाना पीना जिंदगी की जरूरतों में ये हर वक्त अल्लाह का मोहताज है। अगर ये अल्लाह की ताबेदारी की जिंदगी गुजारेगा तो अल्लाह इसकी हर जरूरत को सहूलत और आसानी के साथ पूरी करेगा, वक्त पर बारिश बरसाएगा, जमीनों से खुदा गल्ला गल्ला उगाएगा, जानवरों के दूध दूध में खुदा बरकत देगा, और इनकी आपस की जिंदगी में इनके अंदर मोहब्बत है, खुदा इनके दिलों में आपस में मोहब्बत डालेगा, दुनिया की जिंदगी ऐसे पहचान बनेगी, और मौत के बाद अल्लाह खुश होकर हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में अल्लाह ताला दाखिल करेगा, कहाँ दाखिल करेगा बोलो बोलो, जन्नत में, जन्नत हक है, जहन्नम हक है, मरना हक है, कब्र कब्र की जिंदगी हक है। हाँ, अल्लाह के सामने पेश होना हक है, हर आदमी को मरने के बाद अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा, और उसे अपनी जिंदगी का हिसाब देना है, चाहे मालदार हो चाहे गरीब हो, हाँ चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे बेपढ़ा हो, और चाहे बादशाह हो चाहे वजीर हो, हर एक को अपनी जिंदगी का हिसाब देना है। अल्लाह ताला शान हो रोजाना अपने बंदों को ये बात याद दिलाते हैं, हाँ नमाज पढ़ते हैं, नमाज नमाज के सूरह फातिहा पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين کی کیا معنی ہے کہ روزے جزا کا مالک ہے جس دن اللہ تعالی اپنے بندوں کا حساب دے گا اور اپنے بندوں کے اعمال کا بدلہ دے گا اس دن کا وہ مالک ہے تمہیں مرنا ہے کہ اللہ تمہیں زندہ کرے گا پھر میدان حشر میں तुम्हारा हिसाब किताब लिया जाएगा, अच्छे आमाल का बदला भी और बुरे आमाल का बदला भी हरेक को दिया जाएगा, और कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, ला बजर वाजरा, यहां तक कि आखिरत में मां बाप भी अपनी औलाद की मदद करके तैयार नहीं होंगे, क्यों मैं अपने उर्मरों में रखी ओम भी वावी साहेबती वनी, जिस दिन इंसान अपने भाई से, अपने माँ से, अपने बाप से, अपनी औलाद से भागेगा, अपनी बीवी से भागेगा, कोई किसी को मदद करने तैयार नहीं होगा। हरेक अपने आमाल, अपने आमाल की फिक्र में मेरे दोस्तों को बात करेगा, कोई किसी की मदद का नहीं होगा। इसलिए अल्लाह ने हर मुसलमान, हर इंसान को कुरान पाक में इस बात से मुतमद किया, मेरे बंदो मौत से पहले पहले अपनी जिंदगी की तैयारी कर लो, और तुम्हारी जिम्मेदारी से तुम्हारी आल औलाद और तुम्हारी दुनिया की मशगूलियां तुम्हें गाफिल न कर दे। तुम्हारी औलादें और तुम्हारा माल तुम्हें अल्लाह की इताअत से गाफिल न कर दे। हम सबको मरना है, और मौत से पहले पहले अल्लाह ने ये जिंदगी एक मौका दिया है अपनी मौत के बाद की अवधि जिंदगी बनाने के लिए। जिसकी मौत के बाद की जिंदगी बनेगी, अल्लाह उसकी दुनिया की जिंदगी बना देगा, चैन सुकून इतना देगा। आज इंसान के पास चैन सुकून नहीं है, हालांकि चैन सुकून और राहत के अस्बाब बहुत है। घरों में एसी आ गई, एसी घरों में राहत आराम की कितनी चीजें आ गई, लेकिन चैन सुकून नहीं आया। हर आदमी परेशानी की शिकायत करता है कि मरता दुआ कर दो, क्यों कि अल्लाह ने इंसान की सुकून चैन और राहत दुनिया की चीजों में नहीं रखी। दुनिया की चीजें तो अल्लाह ने इसके इस्तेमाल के लिए पैदा की है, इन दुनिया की राहत के नक्शों में राहत तो अल्लाह देगा तो इसे मिलेगी, अगर अल्लाह राहत न दे तो नहीं मिलेगी। भैंस में, भैंस को अल्लाह ने पैदा किया है और दूध के लिए पैदा किया है, लेकिन जब अल्लाह दूध देगा तो भैंस दूध देगी, पर अगर क्या कहते हैं भैंस उड़ी गई, उड़ी रहती है तो वहां से दूध देना बंद कर दिया है। भैंस उड़ी गई कैसे ना, तो भैंस अपनी दांत से दूध नहीं दे रही, अल्लाह अपनी कुदरत से दूध दे रहा है। जमीन से अल्लाह अल्लाह उगाता है, जैसे क्या कहते हैं सीजन फेल थी गई, फेल थी नहीं, फेल करवा मांगी से, इस अल्लाह की कुदरत से जमीन से अल्लाह निकल रहा था, उसी अल्लाह ने जमीन से कह दिया खबरदार। तो जमीन में बीज डालने के बाद भी जमीन ने बीज को खा लिया, बाद में निकला। दिनों में अल्लाह मोहम्मद डाल के तो मोहम्मद आती है ना, दो बार तो सगे भाई लड़ते हैं, दो सगे भाई एक ही माँ माँ के बच्चे, मोहम्मद नहीं है। अल्लाह मोहम्मद कब डालते दिनों में, जब बंदे अल्लाह की दी हुई जिम्मेदारी पर जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह उनकी जिंदगी में मोहम्मद डाल देते हैं। इन नदी नाम लो वहां जो लोग ईमान, अपनी ईमानी जिंदगी गुजारते हैं, जिनके पास ईमान है और जिनकी जिंदगी में नेक अमल है, अल्लाह उनकी वाजहाना मोहब्बत दिलों में डाल देता है। जिंदगी में मोहब्बत और खाना पीना का वो तो चलता है, लेकिन दुनिया भर की चीजें वाले की मोहब्बत ना हो तो जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है। मेरे भाई ने जी, जो हमारा मुसलमान होने के एतबार से पहली जिम्मेदारी यह है कि हम अपनी जिंदगी को अल्लाह की ताबेदारी वाली जिंदगी बनाए, अपनी मर्जी वाली जिंदगी में गुजारे। जिंदगी गुजारे के दो रास्ते हैं, एक अपनी मर्जी पर चलना और एक अल्लाह की मर्जी पर चलना। अल्लाह तआला शान होने अपने बंदों को न खाने से रोका है, न पीने से रोका है, न कमाने से रोका है, दुनिया की जरूरत से पूरी करने से अल्लाह ने रोका नहीं है, लेकिन हाँ अल्लाह ने दुनिया की जरूरतों के पूरा करने का तरीका बताया अपने मिली के जरिए। कमाओ तो कैसे कमाओ, मुसलमान बन के कमाओ, कैसे कमाना बोलो, मुसलमान बन के कमाओ। पहले मुसलमान है, सबसे पहले हमारे दिल में ये बात आनी चाहिए कि मैं सबसे पहले मुसलमान हूं, मेरा पैदा होने के साथ मेरे कान में अजान भी है पहले दिन से कि तू मुसलमान पहले एक कान में अजान हुई है, एक कान में अकाम हुई है, और एक समझा गया कि तेरी अजान की हो गई है, तेरी हिफाजत की हो गई है, और तेरी नमाज जनाजा तैयार है, लिहाजा अपनी मौत की तैयारी कर, इसे जनाजे की अजान नहीं है, यकामत भी नहीं है, वो हो गई वो तो पैदा हुआ था उसी दिन, और मरने के लिए अल्लाह ने क्यों पैदा किया था, इसे अल्लाह ने दुनिया पैदा भी किया था, बोलो जीने के लिए मरने के लिए, मरने के लिए, तो पहले भी पैदा होने के साथ ही मरा तब भी जरा भी नमाज हो रही है, क्या पैदा हो जिंदा और चाकू मर गया तो जरा की नमाज पढ़ो इसकी, और 50 साल के बाद मरेंगे तब भी जरा की नमाज पढ़ो, अजान रेखा मत कैसी हो गई है, अल्लाह ने तो मौका दिया था 50 साल अपनी आखिर बनाने का, तो सबसे पहले हमारे जहन में आए थे मुसलमान, क्या मतलब मैं अल्लाह अल्लाह के रसूल का बोलो दावेदार हूं, अल्लाह का मुझे पहला हुक्म यह है कि तू अल्लाह पर ईमान ला, तो मैं अपनी जिंदगी में मेहनत करके अपने दिल की गहराई में ईमान होता हूं, ईमान के माने अल्लाह का डर, मेरे दिल में अल्लाह का डर आ जाए, मेरे दिल में अल्लाह की दाद की उम्मीद आए, मुझे अल्लाह के ना किसी से कोई उम्मीद ना हो, एक अल्लाह से उम्मीद जिंदगी के हर काम में कि मेरा काम अगर बनाएगा तो एक अल्लाह बनाएगा, और किसी के हाथ में किसी हुकूमत के हाथ में न मेरे माँ बाप के हाथ में न मेरे भाई बहनों के हाथ में, सिर्फ एक अल्लाह के हाथ में उम्मीद वही की नहीं जा सकता, उम्मीद हो तो एक अल्लाह से और डर हो तो एक अल्लाह और किसी का डर नहीं, इसलिए किसी के हाथ में कुछ है ही नहीं, न नफा पहुंचाना किसी के हाथ में, न नुकसान पहुंचाना किसी के हाथ में, नफा नुकसान का मरे की गल्ला है, ये एहसास पैदा हो मजदूर को मजदूरी में, ताजे को तिजारत में, किसान को अपनी अपनी खेती में, जवान को अपनी जवानी में कि मैं मुसलमान हूं, मैं अल्लाह का ताबेदार हूं, मैं अल्लाह के कई नबी का ताबेदार हूं, मैं आजाद नहीं हूं, अगर इतनी शबन के मिनिस्टर की कुर्सी जाके बैठेगा तब से उसको पहला समझना पड़ेगा मैं मुसलमान हूं, मैं मिनिस्टरी की कुर्सी पर भी अल्लाह का ताबेदार हूं, अल्लाह के नबी का ताबेदार हूं, कॉलेज में मैं अल्लाह का ताबेदार हूं, अल्लाह के नबी का ताबेदार हूं, हाँ हर जगह, जब ये देश के एहसास हमारे तरह जाएगा और अल्लाह की ताबेदारी की जिंदगी हम गुजारने वाले बन जाएंगे तो फिर अल्लाह ताला हमारे हालात दुरुस्त कर देगा, हमारे हालात को दुरुस्त करेगा, हमारी जिंदगी को खुद आयत से बदलेगा, अल्लाह और अमन से बदलेगा, दुनिया में अल्लाह ताला शाम हमारी बात को चलाएगा, हमारी बात को ना चलाएगा, हमारी जिंदगियों में खुदा इत्मीनान और सुकून अदा फरमाएगा, इत्मीनान सुकून अब अदा बेजी के लाए तक मैंने खोलो कुरान काम को अल्लाह कहते हैं कान खोल कर सुन लो कि अल्लाह की इकात में अल्लाह ने दिल का सुकून रखा है, एक आदमी गाड़ी लेके चलता है और ट्रैफिक के कानून की रियायत के साथ पाबंदी के साथ रियायत के साथ चलता है तो उसे कोई परेशानी होगी, अरे बोलो नहीं, लेकिन एक आदमी गाड़ी लेके जा रहा है और ट्रैफिक के कानून के खिलाफ वर्जी करके जा रहा है तो उसको सुकून मिलेगा, देखता जाएगा पीछे कोई गाड़ी कर जाते हैं, इसने मेरे दोस्तों लाल बत्ती से
गुजर तो गया वो, लेकिन अंदर परेशान के बादल नहीं रहा, जिनमें सुकून नहीं रहेगा। तो जब एक दुनिया की नजर हाकिम की कानून की खिलाफ वर्जी पर इंसान के दिल में सुकून और चैन बाकी नहीं रहता, तो अल्लाह की नाफरमानी करने वाले पर तो सुकून चैन मिलेगा। बोलो तो सही, नमाज तू नहीं पढ़ दो, सच्चाई के साथ तू नहीं रहते, लोगों ने कुछ सतावे थे, माँ बाप ने नाराज तो रखे थे, तू चाहे घमाई लू कमाओ पैसा लो, पर तेरे चेन तो पढ़ाओ तो नहीं। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? इतने भाई हम तुम्हारे पास आए हैं, ये जिम्मेदारी का एहसास हम में पैदा हो और हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने वाले बने, और दुनिया में इंसानों में अल्लाह की ये जिम्मेदारी दुनिया में जिंदा हो। जैसे कि हुजूर की उम्मत में है, हुजूर आखिरी नबी है और हुजूर दुनिया के तमाम इंसानों के नबी है, तमाम इंसान एशियन अफ्रीकन ऑस्ट्रेलियन यूरोपियन अमरीका जो भी है, सबके रसूल और नबी आ रहे और सबके लिए हम अल्लाह की तरफ से पैगाम लाए। कई लोगों अल्लाह को मानो, अल्लाह की मानो, अल्लाह तुम्हें कामयाब कर देगा। हाँ, तो अभी हमारी परेशानी का इलाज नहीं है कि पैसा कमाओ दिलो दो, ये नहीं है। और हमारी परेशानी इसलिए नहीं कि हमारे पास पैसे कम है, हमारी परेशानी इसलिए है कि हमने अल्लाह की इताअत का रास्ता छोड़ा है। एक आदमी नई 25 गाड़ी लेकर चल रहा है लेकिन कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो इसे चैन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बंगलों में सुकून नहीं है, एसी कमरों में सुकून नहीं है, सुकून तो इस घरों में रहने वालों की जिंदगी में है। अगर ये अल्लाह की इताअत और जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह इन्हें सुकून दे देगा, चैन दे देगा, इज्जत दे देगा, इज्जत दे देगा दुनिया में, और मौत का दिन खुशी का दिन होगा। मौत का दिन खुशी का दिन होगा, एक का दिन होगा। मौत के दिन अल्लाह फरिश्तों को भेजेगा, जाओ मेरे बंदे की रूह निकाल के ले आओ, मेरे बंदे को मैंने दुनिया में बहुत कुछ हालात से मैंने इसको आजमाया, लेकिन मेरा बंदा मेरी ताजगी गुजार जा रहा है, अब मैं चाहता हूं इसे को सुकून और चैन दे दूं। चाहे जब ईमान वाला मरेगा ना और मरकर जाएगा दुनिया से अल्लाह को राजी करके, तो अल्लाह ताला इसे जब कब्र में लोग रखेंगे और दफन करके वापस लौटेंगे, तो अल्लाह ताला शान हो दो फरिश्तों को भेजेगा, बशीर और मुबशीर, और दोनों फरिश्ते आकर इसके लिए बिस्तरे का इंतजाम करेंगे, जन्नत का बिस्तर बिछाएंगे इसके लिए और इस पर उसको लिटाएंगे, और ये दोनों फरिश्ते इसे कहेंगे नमोस ऐसे सो जा जैसे दुल्हन अपने घर में सोती है। दुल्हन अपने कमरे में जाकर सोती है, कोई उसको उठाता नहीं सिवाय उसकी मियां के। ऐसे ये मुसलमान जो जन्नत में जिसे अल्लाह ने कब्र में सुलाया होगा, अल्लाह ही उसे उठाएगा और कोई उठाएगा। कब्र की जिंदगी में अल्लाह से नहीं सुलाएगा, क्यों? कि दुनिया में ये नींद छोड़ छोड़ कर फजर की नमाज पढ़ता था, तहज्जुद की नमाज पढ़ता था, मेरी इताअत की जिंदगी गुजारता था, अपनी जी की चाहतों को मेरे से कुर्बान किया है, अब मैं उसकी चाहत को पूरी करूंगा। अल्लाह चाहती करेंगे खबर में नींद पूरी होगी। और जब कयामत कायम होगी और सूर भूखा जाएगा, और जब तमाम लोग अपने खबरों से निकल कर हशर में जमा हो रहे होंगे, तो अल्लाह ताला शानों अपने बंदों के लिए साय का इंतजाम करेगा, अपनी अर्श के साय में अपने बंदों को जगह देगा। काजी आ जाओ, इन अल्लाह अपने अर्श के साय में जगह देगा। और अल्लाह ताला शानू अपने इन बंदों का मेहमानी करेगा और इनको नाश्ते करवाएगा कि मेरे बंदे दुनिया में सोकर उठते थे, नाश्ता करते थे, अब ये कब्र में नींद पूरी करके आ रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनके के लिए नाश्ते का इंतजाम करेगा। और नाश्ते में जमीन, पूरी जमीन की रोटी बनाकर इसमें मेरे भाइयों मछली के जेवर के कबाब अंदर रखकर अल्लाह अपने बंदों को नाश्ता करवाएगा। अल्लाह का नाश्ता होगा वो, उसकी शान निशान होगा। जमीन से जितनी मजे जायके और मजे वाली चीजें पैदा हो रही हैं और जितने मजे चीजों में है, वो तमाम जायकों को और तमाम टेस्ट और महसूस और लज्जतों को जमा करके खुदा की रोटी बनाएगा। खाओ मेरे बंदो। तो नींद पूरी हो गई कब्र में और भूख पूरी हो जाएगी अल्लाह के नाश्ते में। अर्श के लिए मजे आए थे। हाँ, और जरा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माँ बाप का कुर्बान हो, आप खुदे पसंद पर अपनी उम्मत की गुजार में खड़े होंगे कि मेरी उम्मत आएगी, मेरी उम्र आएगी, उसे मैं जान में पौसे पिलाऊंगा। तो वहां से चलेगा ये और हौजे कोबर फसल पर जाएगा और अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम अपने नूर वाले हाथों से जाम कौशल का फरमाएंगे और ये जाम कौशल पिएगा। मता है कौशल का पानी, जाम कौशल कौशल की नहर है, उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद, बर्फ से ज्यादा ठंडा और शहद से ज्यादा मीठा होगा। और पिलाने वाले होंगे जनाब रसूलुल्लाह। जिसकी नींद हो गई खबर में पूरी, अल्लाह के अर्श के नीचे इसकी भूख दूर हो जाएगी। अल्लाह के नबी उसको हौज़े कौसर पर जाने को पिलाएंगे, हमेशा के लिए इसकी प्यास खत्म हो जाएगी। अब जन्नत में, जन्नत में सिर्फ मजे उड़ा देंगे, न भूख है न प्यास है न तकलीफ है। अब जन्नत में खाएगा पिएगा सिर्फ टेस्ट के लिए, जैसे खाना खाकर मुर्गी रोटी सब खा लिया, खाने के बाद फिर जूस का गिला जाता है और आते हैं। अब खाना भूख भूख नहीं है, भूख में नहीं खा रहा, क्या अब फवा के जी को अंदर बहलाने के लिए मेरे खाना है और मेरे खाना में दोस्तों फिर उठता है। ऐसे ही जन्नत में इसे अल्लाह ताला शान हो पेश और मजे के लिए को खाना खिलाएंगे, ये खाएगा और खूब खाएगा, जितना चाहेगा खाएगा और जब चाहे खाएगा और पिएगा। दूध की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, पानी की नहरें हैं, शराब की नहरें हैं, हर चीज मुहैया है। और जिस पर जो दिल में ख्याल आएगा वो चीज उसे हाजिर हो जाएगी। यह जिंदगी आखिरत की, इसकी तैयारी ये दुनिया की जिंदगी है। ये मकान ये जायदादें साथ नहीं आएंगी। मरने के बाद अल्लाह ये भी पूछेगा कितनी जायदाद बना के आया है, कितना बैग से छोड़ के आया है, क्या बनाकर आया है, ये नहीं पूछेंगे अल्लाह। अल्लाह ये तू क्या बनकर आया है, तू मेरा बंदा बनकर आया है, तू मेरी कंपनी बन के आया है, तू मेरी जिम्मेदारी जो दी थी उसको पूरी करके आया है, ये पूछा जाएगा तू क्या बन रहा है। अब हम ये कह रहे हैं कि दावत की मेहनत अधिक मेहनत तबीर की अधिक मेहनत में क्या कह रहे हैं कि अल्लाह का बंदा बनकर जीना सीखो, सलमान बनकर जीना सीखो, ताकि मौत आए और सलमान होने के हालत में। और आपका मुकुल ने इंदाबाद को मुस्लिम अल्लाह कुरान में कह रहे हैं तुम्हें हर की मौत ना है मगर इस हाले के तुम मुसलमान हो, या ना तुम अल्लाह की ताकत जिंदगी गुजारते हो, तुम नमाजी हो, तुम रोजदार हो, तुम ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारने वाले हो, हमारा तारीख के साथ जिंदगी गुजारने वाले, तुम अपने नबी की सुन्नत वाली जिंदगी गुजारने वाले हो, इस हाल तुम्हारी बतानी चाहिए। वो जिंदगी तो मेहनत से आएगी। दीन इस्लाम से चलना आसान है, इस्लाम पर चलना आसान रहेगी किसके लिए, जो इस्लाम पर चलने की ताकत और कुव्वत अपने अंदर पैदा कर दे। लिखना आसान है लेकिन किसके लिए, जो लिखना ठीक है लिखना सीखा ही कैसे लिखना आसान होगा। मोटरसाइकिल चलाना आसान है लेकिन किसके लिए है, जो मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे और जो सीखा नहीं इसको मुश्किल। ऐसे मेरे भाइयों अल्लाह का दीन बहुत आसान, दीन पर चलना आसान किसके लिए, जो दीन पर चलना सीख ले। और दीन पर चलना सीखने के माने यह है दीन पर चलने के लिए सबसे पहले ईमान है। जितना दिल में ईमान अंदर उतरेगा और ईमान मजबूत होगा और ईमान आखरी होगा इतना आदमी की जिंदगी अल्लाह का दिन मजबूत होगा, हर काम करना आसान हो जाएगा। जैसे आदमी तंदुरुस्त होता है ना तो तंदुरुस्त आदमी को वक्त भूख लगती है, खाता है पीता है सोता है, लेकिन आदमी तंदुरुस्त हो बीमार हो, बीमार हो तो अब खाना मुश्किल पीना मुश्किल। ऐसे जब ईमान दिल में आ जाता है मेहनत करके अब नमाज पढ़ना आसान, ताकि पढ़ना आसान, अल्लाह के नाम पर खर्च करना आसान, खुदा की मखलूक के साथ हमदर्दी करना आसान, रोजे रखना आसान, हाँ अपनी कारोबार और तिजारत को ईमानदारी से कारोबार करना आसान, सब आसान। क्यों? अंदर ईमान की ताकत आ गई है। और जब तक अंदर ईमान की ताकत नहीं आती और ये मेहनत करके ईमान अंदर उतारा नहीं जाता तो आदमी के लिए हर चीज मुश्किल है। फिर आदमी को अंदर नीति का जज्बा भी पैदा नहीं होता, गुनाहों के जज्बा पैदा होते अंदर ईमान नहीं है। और जब आदमी में अंदर ईमान उतरता है तो आदमी को अपने गुनाहों से तौबा की तौफीक होती है कि मैंने बहुत गुनाह किए यार माफी मांगो। और ईमान अंदर आने के बाद उसे खैर की भलाई के जज्बे पैदा होते हैं कि मैं गरीबों की मदद करूं, मैं कारोबार ईमानदारी से करूं, मैं अगर मुझे अल्लाह ने किसी पोस्ट तक पहुंचाया तो मैं इंसाफ से तक नहीं गुजारा। अंदर अंदर ईमानी जज्बे हैं, वो जब ईमान अंदर आता है तो ये जज्बे इंसान की जिंदगी बन जाए। फिर आदमी अपनी निगाह की अपनी निगाह की हिफाजत करता है कि मैं किसी के माँ बहू बेटी को गलत निगाह से न देखूं। फिर आदमी की जबान आजाद भी होती, आदमी अपनी जबान से भली बात कहता है, भली बात बोलता है, कान से सही बात सुनता है, गलत बात नहीं सुनता, दिमाग से गलत सोचता नहीं, बल्कि दिमाग हरेक के लिए की बात सोचे हो, तो अंदर ईमान आ गया है। जिस में आता है अरे ईमान वसन पता होगा मैं, ईमान दिल में जमता है और जब ईमान दिल में जम जाता है तो फिर आदमी के अमान उसकी तस्दीक करते हैं। अंदर क्या है उसकी, उसको आदमी कैसे जानेगा, उसके अमान से। आदमी साहिब में कितना परिश्रम भरा हुआ हो लेकिन दुकान में मेरे दोस्तों नंदी मारता है तो कोई इसको ईमानदार कहेंगे नहीं, क्योंकि अमल बेमान बेमानी का है। तो इंसान जब अंदर से ईमानदार बनता है तो उसकी जाहिरी जिंदगी भी ईमानदारी बन जाती है। ईमान अंदर आता है और ईमान जिंदगी से जाहिर होता है। और फिर ऐसे इंसानों को हरेक मोहब्बत के निकल देते हैं। दुनिया में किसी इंसान के माल पैसे या उसके औहदे को देखकर आदमी इज्जत नहीं करता, उसका कैरेक्टर को देखा जाता है। कैरेक्टर, एक जवान बच्चा कॉलेज में दाखिले में जाएगा तो पहले कॉलेज वाले उसको कैरेक्टर देखेंगे, इसको आता सर्टिफिकेट उसमें चाल चलकर के लिए उसमें उसको पहले देखता हो क्या हमारा शहर हो क्या होना चाहिए लाल से कैसे। हाँ ऐसे कोई वजीर आजम बन के बैठा हो लेकिन जालिम हो तो कोई उसको अच्छा कहेगा, कोई बादशाह है लेकिन जालिम है, मालदार है लेकिन मालदार माल के विषय में मुतरफ है, घमंडी है, इस पर बैठने को पसंद ही नहीं करता। कोई आता है तो हमारा यू भी कहते हैं हमें लोग कहते हैं ऐसा काम करना चाहिए। ए बच्चो बैठो बैठो भीड़ की पैर थे, दूसरों पानी दिया नहीं तो चले आप लोग रोकते भी नहीं बड़े लोग कि मैं बैठा हूं, इन बातों सिखाओ। इवन व्यक्ति है मंदिर मंदिर चुप के चला जाना, किसमें भाई मेरा दिल हो, एक मेहनत है, ईमान की मेहनत है। जो ईमान की मेहनत करने के बाद हमारे दिल में जितना ईमान अंदर मजबूत होता चला जाएगा, हमारी जिंदगी का उसे हो जाएगा, और जितना हमारे आमल दुरुस्त हो जाएंगे, अल्लाह हमारे दुनिया के हालात दुरुस्त कर देगा। अल्लाह जी फरमाते थे आमाल हालात के बनने और बिगड़ने का ताल्लुक मुल्क उमार से नहीं है कि मुल्क उमार में जाएंगे तो हालात में सकाना। अल्लाह ने इंसानों के हालात के बनने और बिगड़ने का ताल्लुक इंसान के आमाल से रखा है। अगर इसके आमाल हुए जिससे अल्लाह राजी होंगे, अल्लाह इसके हालात दुरुस्त कर देंगे, अगर इसके आमाल ऐसे ही जो अल्लाह को नाराज करने वाले हैं तो ये अपने मुसलमानों के मुल्क में रहकर जो खुद से आदत को खराब कर देगा। इसके आवाज की गुजारिश है, बड़े खुशी की बात है, आवाजार माशाल्लाह फिक्र के साथ आयदा जमा हुए हैं, लेकिन जमा करने का मकसद तो ये नहीं है कि सुना कर चले जाओ, अपनी धरती बनाओ। ये बॉडी नहीं बॉडी जहां लगे कि वही बनोगे। अगर ईमान की मेहनत न देगी बॉडी तो हमारे अंदर काम ईमानदार बनेंगे। हम अल्लाह के करे नबी के साथ अल्लाह वाली मेहनत में हमने अपने आप को लगाया तो अल्लाह हमें अपने नबी वाली जिंदगी तक बना देगा, नबी वाला फिक्र दर्द मोहम्मद बना देगा। दुनिया में भले इंसान बन जाएंगे और दुनिया में अल्लाह तला शान हो, हमें दुनिया में इज्जत और महबूबियत जिंदगी का फरमाकर दुनिया से उठाएगा और खबर में खुदा मीटिंग में सुना देगा और अर्श के साए में जगह का फरमा देगा और अपने नदी के इन वाले आदमी जाकर खुद पिला देगा और फिर हमें ईशा मिशा में खुश होकर अल्लाह तला कहेगा या आई बाजी ला खौफुन अलैकुम वला अंतुम तहज़नून। ओ मेरे बंदो, ओ मेरे बंदो, या आई बाजी, ओ मेरे बंदो, आज तुम्हें कोई डर नहीं है, कोई गम नहीं है। हाँ खुद खुद जन्नत अंतुम वह अजवाजुकुम तहज़नून, तुम और तुम्हारी दुनिया तुम सब के सब जन्नत में दाखिल हो जाओ। या आई बाजी ला खौफुन अलैकुम यौम वला अंतुम तहज़नून अल्लज़ीना आमनू बिआयातिना व कानू मुस्लिमीन। अल्लाह के बंदे कौन है जिनको अल्लाह के या आई बाजी अल्लज़ीना आमनू बिआयातिना जो अल्लाह के कुदरत पर ईमान और यकीन रखते हैं और कानू मुस्लिमीन और दुनिया में अल्लाह की ताबेदार बंदे भी जो उधर क्या है कि अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह हमें जगह दी जितने दावे कर देगा और हमें शामिल किया कहेगा अब हमें शामिल के जन्म करो। इसमें भाइयों दुनिया की जिंदगी खत्म हो जाएगी, धोखे में न रहे हम, धोखे से निकले और अपने आप को नबी वाली मेहनत पर लगाएं, अपने आप को लगाओ। ये शैतान का जो तो नमाज पढ़ू जो मरता, अरे भाई नमाज से अल्लाह का हुक्म है, 24 घंटे की जिंदगी में क्या है। फिर जो नमाज पढ़ते हैं वो नमाज कैसी पढ़ते हैं, जैसे अल्लाह के नजदीक पढ़ते हैं। अल्लाह के कहने वाली नमाज नहीं है, नबी वाली नमाज नहीं है। हमने कभी मौलवी साहब के पास जाके कभी नहीं पूछा कि मरता मैं नमाज तो पढ़ता हूं लेकिन अल्लाह के नबी की नमाज कैसी थी, मुझे सिखाओ। हमारी नमाज सही थी, हमारा बोलना सही, हमारा फैसला सही, हमारा सोचना सही है, हमारे घर की स्थिति सही नहीं। फिर हम कहते हैं तो नमाज पढ़ो छो, नमाज जिसकी नमाज सही हो जाती है और जो सही नमाज अदा करने वाला रह जाता है उसकी नमाज का असर उसकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। हाँ नमाजी आदमी झूठा नहीं हो सकता, नमाजी आदमी धोखाबाज नहीं हो सकता, नमाजी आदमी जुलम करने वाला नहीं हो सकता, नमाजी आदमी किसी के वादा खिलाफ नहीं कर सकता, नमाजी आदमी की बीवी को सता नहीं सकता, नमाजी आदमी पड़ोसी को सताता नहीं है, नमाजी आदमी इन तमाम चीजों से बचने वाला होता है। नमाज नमाज हो जमात को नमाज बनाना, जमात से निकलकर एक अपने अपने ईमान को बनाना, एक अपनी नमाज को दुरुस्त करना, एक तरफ अपने 24 घंटे की जिंदगी को नबी के तरीके पर अमली तौर पर गुजारने गुजारना सीखना, अल्लाह का ध्यान दिल में आ जाए, फिर आता है मुझे देख रहा है, मुझे अल्लाह देख रहा है। तो आदमी के आदमी को ध्यान अल्लाह का आ जाता है, फिर आदमी गलत काम नहीं करता, हमारे हालात कुछ हो जाए। एक दूसरे के हम को पहचाने, हम पर माँ बाप के हकूक है, बीच बच्चों के हकूक है, पड़ोसियों के हकूक है, खानदान के हकूक है, मोहल्ले वालों के हकूक है, हम उनके हकूक को पहचान कर देखने लाने वाले हैं। कयामत के दिन हमें हकूक के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं अल्लाह के कसम खा के कहता हूं, वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ से महफूज ना हो। पड़ोसी का इतना हक है, माँ बाप का हक है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तेरा बाप तेरी जन्नत का दरवाजा है और तेरी माँ के कदमों तले तेरी जन्नत है। और जो माँ को सता है, बाप को सता है, माँ को गाय जाते, बाप को गाय जाते हो। इतने भाइयों, ये जिंदगी छूटे और सही जिंदगी आए, इसके अल्लाह के रास्ते निकलना होता है। और इसी के लिए एक तरतीब बताई जा रही है, इस तरतीब पर अपने आप को लाओ। हर महीने में 3 दिन अपने आप की पाबंदी के साथ अल्लाह के राह में अपना ये माहौल छोड़कर जाओ और मस्जिद के माहौल में 3 दिन दवाखाने में रहो, रूहानी दवाखाना ये है। और हुजूर वाले आमाल अपने आप को लगाओ ताकि अंदर से गफलत दूर हो, अंदर से हमारे अंदर की बड़ाई खत्म हो और हमारे अंदर अल्लाह की अल्लाह के नबी के साथ की मोहब्बत हम मिले और हम 3 दिन अपनी बैटरी को चार्जिंग करके आवे ताकि हमारी गाड़ी को धक्का न देना पड़े। हम अजान सुन रहे हो और लोग इस्माइल अजान देंगे, नहीं, हमारे अंदर की ईमान रहता है अजान की इंतजार में खड़ा हुआ आदमी कि भाई अब अजान होंगे नमाज पढ़ोगे। अंदर अंदर चीज पैदा हो, लोगों के काम आने का जज्बा हो तो अंदर पैदा हो, अंदर ईमान से बनता है तो एक और चीजें होती है, हमारी नमाजें हम सही करने वाले बने और हमारे अंदर लोगों के हकूक की अदा करने का फिक्र पैदा हो। हमारी बीवी का हक है, हक है हकूक पता करना, दुनिया हकूक की अदा करने की जगह है, आखिरत में उसके बदले की जगह है। कयामत के दिन अल्लाह अपने बंदों पर अपने हक के बारे में माफी का दरवाजा खोल देगा कि मेरे हक माफ, बंदों के हकों के बारे में माफी नहीं होगी जब तक बंदे माफ ना करें। मेरे भाइयों, मामूली चीज नहीं है, मौत से पहले पहले मौका है जिंदगी को बदलने का, अल्लाह के राह में निकलना। इसलिए महीने के 3 दिन की पाबंदी हो, साल की चिंते का एहतमाम हो, हाँ 4 महीने एक किला अल्लाह के राह में निकलकर दिन की मेहनत में लगाए ताकि हमारी जिंदगी हमारे ईमान को पानी पहुंचे और उम्मत मुस्लिमा अपनी गलत जिंदगी को छोड़कर सही जिंदगी पर आए। एक जमाना हम इसी बारे में आते थे, अल्लाह हमारे अली इकबाल पंजाबी को गले के रहमत फरमावे, वो यही आया करते थे हमेशा। और उस जमाने में क्या हाल था, आप अपने बड़े बूढ़ों को पूछो, ये एक मस्जिद थी, इस मस्जिद में कोई रखवाल नहीं था, यहां ये उसका सहन था, ये सहन है तो आप ही बात करे तुम्हारे, और उस सहन में भी खड्डे थे और एक छोटी सी मस्जिद थी, ये उसमें एक समय डेढ़ सबकी मुश्किल होती थी समाज में, यह हल था। और हम लोग रेस्टोरेंट के लिए जाते थे वहां, वो ठेके पर तुम्हारे बस स्टैंड पर, यहां तो कोई मिले ना, तो वहां जाना तो दूर से देख के हाल था। आज मैं चल लो बना हुआ है, मेहनत हुई है, कुछ लोगों ने अपने आप को थकाया था, मेहनत की थी, जिसके प्रति अल्लाह ने दिलों को पलटा, आज नमाजें पढ़ने वाले बन गए, हमारे बच्चे हाफिज हाफिज बनने बन गए, आज इन दोस्तों नौजवानों में एक एहसास पैदा हो रहा है कि नहीं यार हमें कुछ करना चाहिए, हमें दिन की मेहनत लगना चाहिए। ये मेरे दोस्तों उस मेहनत के नतीजे में जब आप फिल्मों में जाओगे दुनिया के इलाकों में और जिलों में, तो वहां जाकर आपकी मेहनत का इसी तरह अल्लाह अपने बंदों को मुतवजे करेगा दिन पर, आप उसका जरिया बन जाओगे, हमारी नमाज अच्छी हो जाएगी, हमारा ईमान सही होगा, 24 घंटे की जिंदगी जिंदगी सुन्नतवारी बनेगी, हमारे दिन में नबी वाला दर्द हम खुदा में दे देगा और दुनिया में हम खैर को हिदायत के फैलने का जरिया बन जाएंगे। रही रोजी तो मुकद्दर की रोजी को अल्लाह हर हाल में अदा करेगा, चाहे 12 महीने मेहनत करो। ए भाई ए भाई ए भाई अरे बेटा, मुकद्दर की रोजी तय है वो मिलनी है, वो चाहे कम मेहनत करो चाहे ज्यादा मेहनत करो, लेकिन हाँ अगर अल्लाह के दीन की मेहनत करते हुए दीन पर जिंदगी गुजारते हुए मुकद्दर की रोजी कमाओगे अल्लाह वो रोजी खुश होकर देगा, बरकत के साथ देगा और दुनिया तुम्हारे लिए रहमत बना देगा। और अगर अल्लाह को नाराज करके कमाओगे तब भी मुकद्दर की उज्जत तो देगा, तो उसने तय कर दिया है नाराज होकर देगा, लेकिन उसमें कोई बरकत नहीं होगी, बगैर बरकत की रोजी होगी और दुनिया और माल पैसा के बवाल बन के आएगा। अल्लाह के नबी की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुका बिका मिन माली यकूनु अलैहि वमाल, अल्लाह मैं तुझसे ऐसे माल से फला मांगता हूँ जो मेरे लिए वबाल बनेगा, और मैं वला भी यकूनु अलैहि अज़ाबन, और अल्लाह ऐसी औलाद से फला मांगता हूँ जो फला मेरी जो औलाद मेरे लिए अज़ाब बन जाए। मेरे भाई मेरे अजीजो, आप गुजारिश है अल्लाह के दीन की मेहनत पर लगोगे, जान माल लगाओगे, नबी वाली मेहनत में अपने आप को खपाओगे, अल्लाह खुश होकर हमारी हमारी जिंदगी में हिदायत का नूर हमेशा फरमाकर, हमें दीन का हम और सबसे अल्लाह फरमाकर आप दुनिया में हमें खैर को हिदायत के करने का जरिया बना देंगे, और अल्लाह तआला शानो हमारी मुकद्दर की रोजी और मुकद्दर की दुनिया अल्लाह हमें खुश होकर अता फरमा देंगे। ये दुनिया भी हमारे लिए रहमत बन जाएगी और ये दुनिया भी हमारे आखिर के बनने का जरिया बन जाएगी। इसमें पाया बताते हमारी गुजारिश है, ये बात सुनकर चला जाना ये अच्छी चीज नहीं है, सोचो मुझे मरना है, सोचो मुझे मरना है और मरकर मुझे खबर में जाना है, खबर में मेरे साथ क्या आएगा, मरना यकीनी है ज्यादा, और मरकर ये भी यकीनी है कि दुनिया में से कोई चीज साथ हमारे नहीं आएगी, दुनिया यही छोड़ के जाएगा हमें, ये भी यकीनी है, और ये भी यकीनी है जितने आमाल अच्छे या बुरे किए हैं सब आमाल साथ लेकर जाएगा आदमी, और इसी इसके आमाल पर या तो इसकी कब्र जन्नत का बाग है या जहन्नम का घड़ा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल कब्र रौज़तुन मिन रियाज़ जन्नत और खुफ़्रतुन मिन नारि नार, जन्नत कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा है। नमाज छोड़कर गलत जिंदगी गुजार कर दुनिया से जाए आदमी तो क्या होगा इसका, अभी मौका है तौबा कर देने का, माफी मांग लेने का, जिंदगी को सही रूप पर लाने का। अगर हमने अपनी जिंदगी को सही रूप पर लाने की मेहनत अपने आप को लगा दिया और मेहनत करते करते मौत आ गई तो इंशाल्लाह अल्लाह हमें अपने नेक बंदों के साथ हमारा सहमत होगा, क्योंकि हमारी मंजिल वो थी, हमने उसके लिए मेहनत करना शुरू की थी, गलत जिंदगी छोड़कर सही जिंदगी पर आने के लिए तो हम अल्लाह की राह में निकलकर मेहनत करने पर अपने आप को डाल लिया था हमने। हम तालीम के अनुभव बैठते थे, हम जमातों के आने पर उनके साथ बैठते थे और दुआओं में शरीक होते थे कि अल्लाह हमें हिदायत दे दे, अल्लाह हमें गलत जिंदगी छुड़ा दे, हमें सही जिंदगी पर डाल दे, इसकी फिक्रों के साथ हम मेहनत करते करते बड़े हैं तो अल्लाह तआला हमें ईमान हम आपके नेक बंदों के साथ हमारा समा देंगे। जाता है ना कुरान हाफिज बनने वाला कुरान का हिफ्ज करते करते मर गया और पूरा हिफ्ज नहीं हुआ, हाफिज नहीं हुआ तो अल्लाह कयामत के दिन उसको हाफिजों के साथ उठाएगा, क्योंकि मेहनत करते करते मरा। हम ईमान सीखते सीखते मरे, हम नबी वाली मेहनत करते करते मरे ताकि कयामत के दिन अल्लाह हमें अपने नबी के साथ हमारा हाथ फरमा दे, जाकर भी जाते अरे बोलो तो सही चाहते हम सब चाहते हैं।
उसके लिए भाई दोस्तों नबी वाली मेहनत से करती बना दुनिया में थोड़ी बहुत मुजाहदा इख्तियार कर लो, अल्लाह अल्लाह के रास्ते की मशक्कतें तकरीबन थोड़ी उठा लोगे, अपनी जान माल को दीन की मेहनत में लगा दोगे, अल्लाह खुश होकर हमारी जिंदगी बना देगा और हमें अल्लाह दुनिया से खुश होकर मेरे दोस्तों में उठाएगा। इसे सबके सब ये तय करो कि इंशाल्लाह मौत तक दीन की मेहनत को अपनी जिम्मेदारी समझ कर करेंगे। अरे करोगे पहले तो नियत करो फिर इंशाल्लाह करो, जिसे मैं तय करो नहीं अब तक नहीं किया है मानना माफ कर दे, लेकिन अब जो बाकी जिंदगी है उस बाकी जिंदगी को नबी वाली मेहनत दीन की मेहनत में अपनी तरतीब बनाकर मानना तरतीब रोजाना की तरतीब नमाजों का एहतमाम सुबह शाम कुरान पाक की तिलावत और तस्बीहात की पाबंदी अपनी जिंदगी को सुन्नत के साथे में डालना अपने लिबासों को बदलो नबी वाले लिबास पर आओ अपनी जाहिरी शक्ल को बदलोगे सुन्नत पर लाओगे अल्लाह हमारे अंदर की जिंदगी भी ठीक कर देगा। जाहिर दाखिल बातें में पड़ता है हाँ नबी वाले सुन्नत पर लिबास पहनोगे अल्लाह तआला अंदर ने दोस्तों तवाज़ो देगा अंदर मेरे तो अल्लाह अपने दी की अपने दी की मोहब्बत दे देगा अपनी जिंदगी को मेरे दोस्त सुन्नत पर लाओ लिबास को रहन सहन को चलने फिरने को खाने पीने को घरों में सुन्नत वाली जिंदगी आए इसके लिए दोस्तों अल्लाह के रास्ते की मेहनत है इसमें अपने आप को लगाओ। हाँ और एक मरतबा चार महीने अल्लाह के रास्ते में निकल कर इस मेहनत को समझो सीखो अपने अंदर ईमान की ताकत पैदा कर लो अपनी नमाजों को सही कर लो अपनी 24 घंटे की जिंदगी नबी के तरीके पर अमली तौर पर गुजारना ये मैं तो अमली तौर पर गुजारना सीखना है। चार महीने अल्लाह नबी वाली मेहनत कैसे करना उसको सीखना ये चार महीने एक मरतबा लगाकर फिर मेरे दोस्त अपनी सारा तरतीब बनाओ 11 महीने अपनी दुनिया के काम काज करो 40 दिन खुदा के राह में निकल कर नबी वाली मेहनत के जरिए दुनिया के सूबों में इलाकों जा जाकर मेहनत जिंदा करो नमाज नमाज जिंदा हो आमाज जिंदा हो नबी वाली मेहनत जिंदा हो इसके लिए फिक्र करो महाना तरतीब बनाओ कि भाई मई महीने में 27 दिन कारोबार करने काम धंधा करना है अपनी दुनिया की जरूरतें पूरी करनी है फारिग करके अपनी फिक्र लेकर जैसे बीमार आदमी जिसको मेरे दोस्त को कैंसर हो गया हो और डॉक्टर कहे हर महीने में 3 दिन तुम्हें इंजेक्शन लेने आना है तो 3 दिन वो दवा खाने में रहता है बीमारी फिक्र ऐसी हमारी ये रूहानी बीमारियां ये गफरत इसको दूर करने के लिए और ये दुनिया की गफलत जो हमारे में आती है उसको खत्म करने के लिए अल्लाह वालों ने जो तरतीब बनाई है कि महीने में 3 दिन इस दुनिया के माहौल को छोड़कर अपने 3 दिन फारिग करके अपनी जान माल लेकर जमा कर निकलो और मस्जिद वाले माहौल में रहकर नबी वाले अमाल अपने आप को लगाओ और फिर अल्लाह से मांगो ए अल्लाह तेरे नबी वाली जिंदगी दे दे और तेरे नबी वाली जो ईमान जो तू चाहते हो ईमान बनाना फरमा दे इंशाल्लाह। अगर इस तरतीब पर हम रहेंगे रोजाना नमाज के अहतमाम के साथ अपनी मस्जिद में वक्त निकाल कर बैठ लो और 3 तस्बीह पाबंदी से पढ़ो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद दुरूद शरीफ के बाद सुबह शाम 3 तस्बीहात को पढ़ोगे अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत इसमें आएगी गुनाहों की नफरत बुदा जिन पैदा करेगा और कुरान पाक पढ़ना नहीं आता सीखो ये बड़ी बदनसीबी की बात है कि मुसलमान को कुरान शरीफ पढ़ना ना आए माँ बाप पे तो मेरे दोस्तों भूल कर ली अब हमारी जिंदगी में तो सीखना शुरू करें अगर कुरान शरीफ सीखते मर जाएंगे तो अल्लाह ताला ने कुरान के पढ़ने वालों पे तो हमारा आगे बढ़वा देगा हम कुरान शरीफ सीखे और एक ही कायर सीखे तो कुरान आ गए अब आप अपने वक्त निकालकर उनसे वक्त मांगो और रोजाना आधा घंटा मस्जिद में बैठकर अपने पुराने पाप को सही करो और जरूरत के मसाइल सीखो बाकी ना बाकी के मसाइल सीखो जरूरी है मुसलमान पर इतना आइल दीन का सीखना फर्ज है कि जिससे हलाल और हराम की तमीज हो जाए खुद सीखो फिर अपने घर की औरतों को सिखाओ बाकी ना बाकी के मसाइल को सिखाओ उन्हें दिमाग पहनना सिखाओ उन्हें घर में रहना सिखाओ तुम्हारे जिम्मे है
ये कब होगा? जब तुम अल्लाह की राह में जा जाकर अपने अंदर इस चीज को सीखोगे, समझोगे, अपने अंदर इस जिम्मेदारी का एहसास पैदा करोगे, फिर इंशाल्लाह जब घर आकर मेहनत करोगे, खुदा तुम्हारे फिक्रों पर तुम्हारे घरों के माहौल को दूर कर देगा। औरत की जिंदगी में जब दीन की जिक्र आ जाती है ना, तो घर में बच्चों में दीन आ जाता है। इसे आप हजार हमारी गुजारिश ये है, सबके सब में दोस्तों चार चार महीने की तकलीफ बनाकर एक मरतबा तो कम से कम साहबा की मुशाबत से इख्तियार करते हुए एक मरतबा चार महीने तो अल्लाह की राह में आदमी लगा दे, फिर हर साल के किले की तकलीफ दसवां हिस्सा है, दसवां हिस्सा लगाओ। अगर दसवां हिस्सा भी लगा लोगे जीत पर, तो अल्लाह तआला शानो जिन साहबा ने अपनी पूरी पूरी जान माल लगा दिया, खुदा हमारा हबीब जैसा फरमा दीजिए। इसके भाई दोस्तों अभी अभी ये अगस्त के महीने में बकराईद के बाद 20 अगस्त को हमारी मस्जिदों से जमातें बनाना तय हुआ है, तो हर भाई का करना है, इन सब का लगना है, इन सबको की तरतीब बनानी है, खुद की तरतीब, खुद के लिए कि मुझे जन्नत में जाना है, मुझे अल्लाह का बंदा बनना है, मुझे नबी का उम्मती बनना है, लिहाजा मुझे अल्लाह के दीन की मेहनत कर अपनी जान माल लगानी है और अपनी तरतीब खुद बनाओ। जब खुद बनाओगे और अल्लाह से मांगना करोगे, अल्लाह तुम्हारे लिए आसान कर देगा और अल्लाह तुमसे दीन का काम लेगा और इस बस्ती ने इंशाअल्लाह अल्लाह दुनिया के मुल्कों में हिदायत के फैलने का इस बस्ती वालों को बड़ा जरिया बना देगा। इस जैसा के सब मेरे दोस्तों जम कर बैठो, हाँ आप सरदार जम कर बैठे, कोई जबरदस्ती नहीं है, खुद को फिक्र करनी है। एक बात तय हुई है, ये 100% मजबा अपना कुछ न कुछ निजाम बनाकर यहां से मेरे दोस्तों उठे, इससे पहले न उठे। हाँ आप हजार को अपनी अगस्त के महीने से अपनी या अपने घर की मेहनत किसी एक की तरफी बनानी है, तो इंशाल्लाह अगस्त में बकराईद के बाद मैं चार महीने जाऊंगा या मैं चिल्ला जाऊंगा, मेरे घर वाले, मेरे घर से बना भाई या मेरा बेटा जाएगा, अपने अल्लाह के भरोसे पर, अल्लाह की मदद के वादों पर यकीन करते हुए तय करो, इरादा करो, सच्चाई का मामला अल्लाह से करो, अल्लाह आपको सच्चाई के मामले सच्चा कर दिखाएगा। अल्लाह ने कुरान में इस बात का वादा किया है, ओ ईमान वालों तुम अल्लाह के दीन की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी जिंदगी में अपनी उम्मतियों को दुआ दी है, अल्लाहुम्म नसर मन नसर दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करे उसकी तू मदद कर। अल्लाह के नबी की मकबूल दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह के वादे आपके साथ हैं, अल्लाह पर निगाह रखकर कदम उठाओगे, अल्लाह आपकी मदद का हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ देगा। इसमें दोस्तों सबके साथ बैठे रहो, अभी किसी को जाना है किसी को जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अपनी जात के बारे में फैसला करो, मुझे बनना है, कल मेरी मौत आ गई तो मेरा क्या होगा, सोचो इसको, सोचो बीवी का क्या, बच्चों का क्या, कारोबार का क्या, ये तो करते करते बूढ़े हो गए, जवान हमारी पूरी हो गई, अब ये सोचकर मेरा क्या होगा, इस हाथ में मेरी मौत आगे मेरा क्या होगा, इसको सोचो और अपने बारे में फैसला करके अपने आप को पेश करो कि इंशाल्लाह बकराईद के बाद 20 अगस्त की जमातें जा रही है, उसमें इंशाल्लाह मैं चार महीने के लिए मैं तैयार हूँ, मेरा नाम लिखें, अपना अपना लिखाओ, अपने घर में जिसका क्या करो उसका लिखाओ, बैठे बैठे अल्लाह को मुतवज्जो होकर अल्लाह से दुआ मांगते रहो कि अल्लाह हम सबको कबूल कर ले और हमें बख्श, जिंदगी से निजात का फरमा दे, इसकी दुआ करते रहो और दुआ मांगते रहो, और जिनके दिल में अल्लाह पाक डाले वो खड़े होकर नामे करना शुरू करे। अब पहल करो और खड़े होकर बोलो कि कौन कौन हजारते हैं जो अगस्त के महीने से चार महीने के लिए अपने आप को पेश करते हैं, माशाल्लाह हर मस्जिद से चार महीने की जमात बन सकते हैं, बनाओ। अगर आपको तबीयत पर ले लो, बहुत मुश्किल नहीं, आसान है,